समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
भरोसा वो शय है जो जिंदगी को आसानी और खुशहाली से जीने की कुंजी है, मगर इसी भरोसे का एक दूसरा पहलू भी है, भरोसा करो मगर आंख खोल कर। अगर हम आंख मूंद कर किसी पर भरोसा कर लेते हैं तो हमें दो में से कोई एक चीज तो यकीनन हासिल होती है, जिंदगी भर के लिए एक सच्चा और अच्छा दोस्त, या फिर जिंदगी भर के लिए कभी न भूलने वाला एक सबक। तो बस ये हम पर है कि जिंदगी से हमें दोस्त चाहिए या सबक। फिलहाल सबक को एक तरफ रखते हुए आपका दोस्त यानी आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभात का कार्यक्रम आज सवेरे आपको शुभ प्रभात कहता है, जिसे आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज सवेरे में आपके साथ मैं हूं नईम अख्तर और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सुभद्रा रामचंद्रन। शुभ प्रभात तो हमने अपने सभी श्रोताओं को कह दिया। yes. अंग्रेजी में अगर मैं शुभ प्रभात कहूं तो गुड मॉर्निंग सुभद्रा।
गुड मॉर्निंग नईम, वेरी warm welcome to listeners, rise and shine guys, and get ready to hear another interesting edition of your favorite magazine program, Aaj Savere. So Naeem, let's begin with some news headlines.
Bilkul.
So I'm starting with the news bulletin now.
Ji.
Prime Minister Narendra Modi will hold talks with French President Emmanuel Macron in Paris today, aimed at further strengthening India-France relations. He will also engage in key bilateral discussions, where several important bilateral deals are also expected to be signed between India and France. He will also set to take part in the AI Action Summit today, where India is co-chairing with the objective of establishing global AI standards and promoting responsible AI development. Last night, Prime Minister received a warm welcome upon his arrival in France.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में यूनानी दिवस पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उपस्थित रहेंगे। प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक, शिक्षक और स्वतंत्रता सेनानी हकीम अजमल खां की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 11 फरवरी को यूनानी दिवस मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय में केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन का विषय समेकित स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार आगे की राह है। ये सम्मेलन संवाद, सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान का काम करेगा, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने में यूनानी चिकित्सा की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना है।
India Energy Week 2025 is set to start from today in New Delhi. Briefing media in New Delhi, Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri said, Prime Minister Narendra Modi will virtually inaugurate the four-day mega event. He said that the four-day event will be the second largest energy event globally in terms of ministerial and CEO participation, exhibition space and the number of sessions. The minister said that the event will showcase the country's success with the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana PMUY as a model for global adoption.
IEW25 is poised to be bigger, diverse and more impactful than its previous two editions. It will span 1 lakh square meters and will be the second largest energy event globally in terms of participation, which means ministers, CEOs, exhibition space, sessions.
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में देश के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव अपशिष्ट कचरा निस्तारण उपकरण सृजनम का शुभारंभ किया। तिरुवनंतपुरम में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय अंतर अनुशासनात्मक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से विकसित ये देश में अपनी तरह का पहला उपकरण है। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कचरे से कंचन की ओर बढ़ने के लिए आदर्श बदलाव का आह्वान किया और स्थिरता तथा पर्यावरण संबंधी चिंताओं के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने भारत में आए आर्थिक परिवर्तन का भी उल्लेख किया और कहा कि देश अब 5 दुर्बल देशों में से निकलकर प्रथम 5 समूह का सदस्य बन गया है और निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। सृजनम उपकरण को महंगे और ऊर्जा गहन भस्मक पर निर्भरता के बिना रक्त, मूत्र, थूक और प्रयोगशाला डिस्पोजेबल सहित रोगजनक बायोमेडिकल अपशिष्ट को कीटाणु रहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। उल्लेखनीय रूप से ये उपकरण दुर्गंध को भी बेअसर करता है तथा विषाक्त अपशिष्ट को सुखद सुगंध प्रदान करता है।
World Audio Visual and Entertainment Summit Waves 2025 is offering a unique opportunity for individuals who understand their city's sustainability efforts, challenges and achievements called City Quest Shades of Bharat. It is an innovative educational game and a key component of the ongoing Create in India challenge under Waves 2025. Information and Broadcasting Ministry said that this game is designed to educate and inspire the youth by gamifying the metrics of urban development through the lens of the Sustainable Development Goals. It explores the strengths and challenges of 56 cities across the country. This platform will provide a space to highlight cities making significant strides toward a sustainable future. Participants will get the opportunity to showcase their knowledge about the city's SDG journey, and winners will be felicitated at Waves 2025 to be held in Mumbai from 1st to 4th of May.
बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप 2025 आज चीन के किंगदाओ में शुरू होगी। भारत की ओर से लक्ष्य सेन और मालविका बंसोड़ इस प्रतियोगिता में चुनौती पेश करेंगे। लक्ष्य सेन एचएस प्रणय के साथ पुरुष एकल वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि भारत की नंबर दो खिलाड़ी मालविका बंसोड़ महिला एकल में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। एशियाई खेलों के चैंपियन सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी भारत के लिए पुरुष युगल में भाग लेंगे। महिला युगल में युवा सितारे त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ओलंपियन अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रेस्टो के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस प्रतियोगिता में 12 टीमें शामिल होंगी, जिन्हें तीन तीन के चार समूहों में विभाजित किया गया है।
एंड नाइम, वी आर मूविंग टू चेस नाउ। वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश बाउड आउट ऑफ फ्री स्टाइल ग्रैंड स्लैम चेस आफ्टर लूजिंग हिज सेकंड स्ट्रेट क्वार्टर फाइनल गेम अगेंस्ट फेबियाना करुआना ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स यस्टरडे। हैविंग लॉस्ट द फर्स्ट गेम विथ व्हाइट पीसेस, गुकेश डिड नॉट लॉस्ट लॉन्ग अगेंस्ट द अमेरिकन ग्रैंड मास्टर इन अ मस्ट विन टाई एंड करुआना फिनिशिंग द कॉन्टेस्ट इन अ मियर 18 मूव्स। गुकेश विल नाउ फाइट फॉर द लास्ट फोर स्पॉट्स।
और अब खबरें प्रयाग राज महाकुंभ से। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में कल माघी पूर्णिमा के अवसर पर होने वाले स्नान से पहले भारतीय रेल ने तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए युद्ध स्तर पर विशेष प्रबंध शुरू कर दिए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर की गई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भीड़ के कारण पैदा होने की स्थिति की समीक्षा की और रेलवे की तैयारियों के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि प्रयागराज के 8 रेलवे स्टेशनों पर महाकुंभ के लिए व्यापक स्तर पर व्यवस्था की गई है।
श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार श्रद्धालुओं के लिए रेलवे स्टेशन पर सर्वोत्तम संभव व्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है।
8 स्टेशन पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिलकर एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है।
रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ सतीश कुमार ने बताया केवल एक स्टेशन प्रयागराज संगम शुक्रवार तक यात्रियों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा, जो एक नियमित कार्य है। प्रयागराज जंक्शन सहित शहर के सभी 8 स्टेशन पूरी तरह चालू है। इस बीच भारतीय रेलवे के सभी जोन भी महाकुंभ के दौरान उपलब्ध सेवाओं के बारे में यात्रियों को सूचित करने और किसी भी गलत खबर को रोकने के लिए लगे हुए हैं। रेलवे बोर्ड की सूचना एवं प्रचार विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने कहा कि संगम क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 13,000 से अधिक रेलवे कर्मियों को तैनात किया गया है।
पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने करीब 1200 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जो उससे प्राप्त फीड को हम एनालिसिस करें, और यहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर हरदम तैयार रहते हैं, माननीय रेल मंत्री जी, चेयरमैन रेलवे बोर्ड और बाकी अधिकारी भी नियमित तौर पर यहाँ पर आते रहते हैं। साथ ही कुछ सीसीटीवी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काम कर रहे हैं।
वहीं मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला ने बताया कुंभ मेले में भाग लेने वाले यात्रियों के लिए मध्य रेलवे कई विशेष ट्रेनें चला रहा है।
काफी सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। आज चेन्नई से बनारस जाने वाली एक ट्रेन मध्य रेलवे होते हुए जाएगी। इसी के साथ में मध्य रेलवे द्वारा 16 गाड़ियां जो कि प्रयागराज और उस क्षेत्र में जा रही है उन गाड़ियों को चलाया जा रहा है।
रेल मंत्रालय ने यात्रियों को नई जानकारी के लिए आधिकारिक रेलवे स्रोतों और सोशल मीडिया हैंडल का उपयोग करने की सलाह दी है ताकि वह सूचित रहे और अफवाहों से बचे। आकाशवाणी समाचार के लिए प्रयागराज से आदर्श।
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
और आज सवेरे में आप प्रमुख महानगरों से जुड़ी हुई खबरें शामिल कर लेते हैं।
Yes, Naeem, starting with news from Chennai. The Chief Economic Advisor Ananth Nageswaran has said that southern states can do more to improve labour productivity, gross value addition, research and skilling. Speaking at the CII South Global Linkages Summit at Chennai, he said that the southern states have performed well in GDP per capita, labour force participation, skilling and gross value addition in manufacturing. He said that the total number of people engaged in manufacturing in South India is 33%, but output share is only about 26%. He said that these states have basic skilled workforce and needs to improve professional skills and high-order professional skills, especially with the global developments of high-value-added manufacturing and adoption of artificial intelligence. We have some more news from Chennai.
Ji.
Tamil Nadu has charted out new plans to document its history. The recent discoveries at Shivagalai in Tuticorin pushed the Iron Age back to 5,000 years ago, potentially making it the oldest in the world. The archaeology department is working on ambitious projects to learn more about ancient Tamils, trade and cultural links. The state has planned an underwater exploration of the Pandya port city Korkai and an excavation of a Karnataka village where Emperor Ashoka's edict stands.
मेरे पास भी दिल्ली से दो खबरें हैं सुभद्रा।
Yes.
राष्ट्रपति भवन में स्थित अमृत उद्यान के शीतकालीन संस्करण में लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस वर्ष उद्यान में पर्यटकों के बीच ट्यूलिप और अन्य प्रजातियों के 140 प्रकार के गुलाब के फूल आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के 80 से ज्यादा प्रजातियों के फूल भी आगंतुकों को खूब पसंद आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 30 मार्च तक खुले रहने वाले इस उद्यान में आगंतुक सप्ताह में मंगलवार से लेकर रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक घूम सकते हैं। सोमवार को रखरखाव के कारण उद्यान बंद रहता है। उद्यान में पर्यटक गेट नंबर 35 से एंट्री कर सकते हैं। अमृत उद्यान में घूमने के लिए बुकिंग और प्रवेश निःशुल्क है। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट से टिकट बुक किए जा सकते हैं। और दिल्ली की एक और खबर यह है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा गुरुवार को एक विशेष सभा का आयोजन किया जाएगा। इस सभा में 2024-25 के लिए संशोधित अनुमानित बजट और 2025-26 के लिए अनुमानित बजट प्रस्तुत किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त दोनों बजटों को पेश करेंगे। इस दौरान 2025-26 के लिए निर्धारित किए जाने वाले कर की दरों पर भी विचार किया जाएगा।
And I'm taking them to Bangalore now.
Ji.
During an aero show yesterday, Secretary Defence Production Sanjeev Kumar unveiled a new name for HJT-36 jet training aircraft developed by HAL. The Hindustan jet trainer HJT-36 is renamed as Yashas after extensive modifications. The aircraft is upgraded with state-of-the-art avionics and an ultra-modern cockpit. It has also gained weight reduction and replaced important equipment with the Indian ones. Yashas is capable of stage 2 pilot training, counter-insurgency and counter-surface force operations, armament training and aerobatics.
महाराष्ट्र मुंबई से भी मेरे पास दो खबरें हैं। बृहन मुंबई नगर पालिका BMC के अतिरिक्त नगर आयुक्त अभिजीत बांगर ने विभागों को निर्देश दिया है कि पुलों के निर्माण के दौरान BMC रेलवे पुलिस और बेस्ट के बीच निर्बाध समन्वय और संचार हो। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि पुल निर्माण को तय समय से पहले पूरा करने के प्रयास किए जाएं। श्री बांगर ने निर्देश दिया कि अंधेरी में गोपाल कृष्ण गोखले ब्रिज, विक्रोली ब्रिज और कारनैक ब्रिज सहित प्रमुख रेलवे ओवरब्रिज को मॉनसून से पहले पूरा किया जाना चाहिए और जल्द से जल्द यातायात के लिए खोला जाना चाहिए। बीएमसी ने पुल निर्माण में बाधा डालने वाली 12 संरचनाओं को हटा दिया है और एक महीने के भीतर शेष 12 को हटाने की योजना है। प्रभावित व्यवसायों के लिए उचित पुनर्वास सुनिश्चित किया जाएगा। और एक और बहुत अहम खबर महाराष्ट्र से ही हमारे पास ये है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र ने 5 जिलों में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के उन्मूलन के लिए एक सार्वभौमिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू किया है। इस राष्ट्रीय स्तर के अभियान का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने किया। लिम्फेटिक फाइलेरिया एक उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग है जो संक्रमित क्यूलेक्स मच्छरों के कारण होता है और दूषित पानी में प्रजनन करते हैं। अभियान का उद्देश्य इसके प्रसार को नियंत्रित करना और निवारक उपायों और दवा के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2027 तक भारत से लिम्फेटिक फाइलेरिया को खत्म करना है।
Yes, now going to Hyderabad now. In Hyderabad, the Cyberabad police arrested 4 more persons today for allegedly threatening and manhandling the head priest. I beg your pardon, that should read yesterday. For allegedly threatening and manhandling the head priest, C.S. Rangarajan of Chilkur Balaji Temple, also known as Visa Temple. C.S. Rangarajan was threatened and manhandled by Veera Raghav Reddy, who runs a YouTube channel named Ramarajam. DCP of the zone, Srinivas, said, so far, 6 people, including 2 women, were arrested and the case is being investigated thoroughly. The police, following a complaint made by the head priest, registered a case and arrested the main accused, Veera Raghav Reddy, on Sunday. Meanwhile, Chief Minister Revanth Reddy spoke to the chief priest over phone and consoled him. The chief minister ordered the police officials to take stringent action against assailants.
कोलकाता से एक और खबर मेरे पास है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में त्रिवेणी कुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। अमृत स्नान 12 फरवरी यानी कल माघी पूर्णिमा के अवसर पर होगा। त्रिवेणी कुंभ मंगलवार से शुरू होकर 13 फरवरी को समाप्त होगा। मंगलवार यानी कल 10,000 दिए जलाए जाएंगे। राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। दूसरी तरफ नदिया जिले के माझेर चार इलाके में गौरांग महाप्रभु घाट पर कुंभ मेला आयोजित किया गया है। बंगा कुंभ मेला परिषद ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये 16 फरवरी तक चलेगा। और अब महानगरों की खबरों के बाद महानगरों का मौसम। दिल्ली में हल्का कोहरा रहने का अनुमान है। तापमान 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम दर्ज किया गया और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा। मुंबई में सुबह कोहरा और बाद में आसमान साफ रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में घना कोहरा छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
Chennai is expected to have fog mist in the morning. Partly cloudy sky will be seen later on. The minimum temperature was 23 degrees Celsius. Maximum will be around 33. Bengaluru is expected to have mist during early morning. The minimum temperature was 16 degrees Celsius. Maximum will be around 30 degrees. Hyderabad is expected to have fog mist in the morning and partly cloudy sky will be seen later on. The temperature will hover between a minimum of 18 degrees and a maximum of 33 degrees Celsius.
जी, और अब आज 11 फरवरी के बारे में बात करते हैं और सुभद्रा बड़ी उत्सुक दिखाई दे रही है कुछ बताने के लिए।
Yes, of course, it's a special day, Naeem. Today is a special day for women and girls in science, those science students, as we celebrate the International Day of Women and Girls in Science. This, of course, is observed on February 11. The day serves as a crucial platform to highlight the vital contributions of women in scientific fields. This day is a reminder that women and girls play a critical role in science and technology communities and that their participation should be strengthened.
जी, और अब हम आ गए हैं 12 फरवरी में इतिहास में क्या-क्या घटनाएं घटी।
12 नहीं,
सॉरी 11 फरवरी स्लिप ऑफ टंग, सॉरी।
दैट्स ओके, परफेक्टली ऑल राइट।
तो 11 फरवरी को क्या-क्या घटनाएं घटी हैं उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं।
यस, 660 BC, really gone back
very very
time.
Bad,
yes.
Right.
Japan was founded by its legendary first emperor Jimmu. His name was Jimmu.
Ji.
And on this day in 1858 in Lourdes, France, 14-year-old Bernadette Sobieho, a miller's daughter, first had visions of Virgin Mary that were authenticated by Pope Pius IX in 1862, initiating the cult of Our Lady of Lourdes.
इसी दिन 11 फरवरी 1613 ईस्वी में मुगल शासक जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति दी। 1814 में यूरोपीय देश नॉर्वे ने स्वतंत्रता की घोषणा की। 1826 में लंदन यूनिवर्सिटी की स्थापना यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के नाम से की गई। 1933 में गांधी जी के हरिजन वीकली का प्रकाशन शुरू हुआ था और 1975 में ब्रिटिश कॉन्जर्वेटिव पार्टी की प्रथम महिला नेता के रूप में मार्गरेट थेचर का निर्वाचन हुआ था।
1942 the comic book Archie was first published and 1978 China lifted the ban on the works of Aristotle, William Shakespeare and Charles Dickens and 1979 cellular jail which is situated in Andaman Nicobar Islands was declared as national monument and a quote as I walked out the door toward the gate that would lead to my freedom I knew if I didn't leave my bitterness and hatred behind I'd still be in prison
hmm.
In 1999 South African anti-apartheid activist revolutionary Nelson Mandela was freed from prison
1987 में अमेरिका ने नेवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया। 1997 में भारतीय खगोल भौतिकविद जयंत वी नार्लीकर 1996 के यूनेस्को के कलिंग पुरस्कार से सम्मानित किए गए।
एंड इन 2020 नो वन वांट्स टू हियर दिस द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली नेम्ड कोरोना वायरस पैंडेमिक कोविड 19 विद द वायरस बीइंग डेजिग्नेटेड कोविड 19 स्केरी टाइम्स राइट
राइट जब तक हम जिंदे तब तक हमें याद डराता ही रहेगा चलिए
एंड देन वन मोर आइटम 2023 द आर्मेनियन टर्किश लैंड बॉर्डर ओपन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 35 इयर्स
और अब बात कर लेते हैं उन हस्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि है या जयंती है या फिर जन्मदिवस है जिनमें सबसे पहला नाम ले रहे हैं हम दीनदयाल उपाध्याय का जिनकी आज पुण्यतिथि है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है वो एक प्रखर विचारक उत्कृष्ट संगठनकर्ता और एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जीवन पर्यंत अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को महत्व दिया। दीनदयाल उपाध्याय की पुस्तक एकात्म मानववाद यानी इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म है जिसमें साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों की समालोचना की गई है।
11 February 1942 death anniversary tributes to one of the stalwarts of freedom struggle businessman Jamnalal Bajaj
Gee.
He was a very close true follower of Mahatma Gandhi and of course as an industrialist and businessman Jamnalal ji was a singular in enunciating for himself a strict code of ethics he earnestly tried to practice the Gandhian ethic in every sphere of his life political social business and personal
और यही थे यानी जमनालाल बजाज जी जिन्होंने 1920 में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बने थे और इस पद पर वो जीवन भर बने रहे और उन्होंने ही वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। और एक बहुत ही खास बात यह कि 1918 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने जमनालाल बजाज को राय बहादुर की पदवी से अलंकृत किया जिसे उन्होंने एक्सेप्ट भी किया पर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ तो जमनालाल जी ने अपनी पदवी लौटा दी।
I think, therefore, I am. This profound quote came from Henri Descartes, French philosopher, mathematician, inventor of analytic geometry. He was a creative mathematician, an important scientific thinker, original metaphysician, and of course, he formulated the first modern version of mind-body connection or dualism, thereby promoting the development of a new science grounded in observation experiment. So he is regarded as the founder of modern philosophy. Henri passed away this day in 1650. And 1963 this day, Sylvia Plath, one of the greatest female poets of the modern era, famous for her iconic works, The Colossus and Other Poems and Ariel, passed away. She was called the voice, friends, indeed, friends with a confident, cool, unique vocal cords, with a body work boasting some of the most upbeat and romantic recordings ever heard. We remember the great late Whitney Houston on her death anniversary, who left us this day in 2012 at the age of 48. Whitney holds the Guinness World Record as the most awarded female artist of all time with more than 400 career awards. She won 6 Grammy Awards, 22 American Music Awards. One moment in time with her.
I face the pain. I rise and fall. Yet through it all, this much remains.
आज ही पुण्यतिथि है कमाल अमरोही की। महल पाकिज़ और रजिया सुल्तान जैसी भव्य कलात्मक फिल्मों को पर्दे पर काव्य की रचना करने वाले निर्माता निर्देशक संवाद लेखक थे कमाल अमरोही। उन्होंने बेहतरीन गीतकार पटकथा और संवाद लेखक और निर्माता तथा निर्देशक के रूप में भारतीय सिनेमा पर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी है और उसे एक अलग ही दिशा देने में अपना ऐसा महत्वपूर्ण योगदान दिया है जो फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिज़ा उनकी जिंदगी की एक ऐसी फिल्म है जिसे अक्सर लोग कमाल अमरोही के नाम के साथ जोड़कर देखते हैं। अपने फिल्मी जीवन के आखिरी दौर में वो अंतिम मुगल नाम से फिल्म बनाना चाहते थे जो नहीं बना सके, लेकिन आज इस वक्त हम उन्हीं की लिखी और निर्देशित फिल्म रजिया सुल्तान से सुनते हैं ये एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो कब्बन मिर्जा की आवाज में है।
गिरफ्तार खुदा फैर करे आई जंजीर की झनकार।
बहुत ही मेलोडियस कानों को भाने वाला गीत, लेकिन पूरा गीत सुनवाने का ना वक्त है ना मौका। बात करते हैं एक और देश के सपूत की जिनका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद। उनकी भी आज पुण्यतिथि है। भारत के पांचवें राष्ट्रपति और कार्यकाल के हिसाब से ये भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की यादों को ताजा और शाश्वत रखने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इनके चित्र से युक्त डाक टिकट जारी किया था। फखरुद्दीन अली अहमद जैसे राष्ट्रभक्त कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। इनका नाम भारत के सच्चे सपूत के रूप में हमेशा याद किया जाता रहेगा।
1847 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग जीनियसेस इन द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी थॉमस एडिसन अर्न पेटेंट्स फॉर ओवर 1000 इन्वेंशंस इंक्लूडिंग द इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक लैम्प फोनोग्राफ द कार्बन ट्रांसमिटर द मोशन पिक्चर प्रोजेक्टर ही ऑल्सो क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिसर्च लेबोरेटरी दिस ग्रेट इन्वेंटर हु एक्सर्टेड अ ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न लाइफ वाज बॉर्न दिस डे इन 1847 मिलान ओहायो। And friends, ladies singer guitarist Sheryl Crow celebrates her birthday today. Started out as a school teacher, but Michael Jackson founder and inducted into his troupe of backing vocalists. Soon after that, Sheryl found successful recordings, her own solo albums, and no looking back for this California lady. Here goes.
पुण्यतिथि है हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक और संपादक पंडित नरेंद्र शर्मा की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी स्वराज भवन में हिंदी अधिकारी के तौर पर उन्होंने एक लंबे अरसे तक काम किया और फिर बॉम्बे टॉकीज मुंबई में आकर उन्होंने गीत लिखे। उन्होंने फिल्मों में गीत लिखने के साथ साथ आकाशवाणी से भी अपना ताल्लुक कायम रखा और स्वतंत्र लेखन भी किया। उनके 17 कविता संग्रह, एक कहानी संग्रह, एक जीवनी और अनेक रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। लगभग 55 फिल्मों में 650 गीत और महाभारत का पटकथा लेखन और गीत रचना भी इन्होंने की और एक गीत आपको उन्हीं के कलम से निकला हुआ हम सुनवा रहे हैं।
भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। भंवरे तू कहना न भूल, फूल तुझे लग जाए मेरी उम्र। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार।
और आज ही पुण्यतिथि है रवि टंडन की, जाने माने भारतीय फिल्म निर्देशक। हिंदी फिल्मों में इन्होंने बहुत सारे, लीजिए आप उनके लिखा हुआ, उनकी फिल्म को निर्देशित किया हुआ खेल खेल में कई गीत सुन रहे हैं, गीत सुनते हैं। और आपको ये बता दें कि 2020 में ब्रज रत्न अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था। आज आज जन्म दिवस वैसे टीना मुनीम का भी है, लेकिन उनके बारे में बात करने का भी वक्त नहीं है क्योंकि अब वक्त हो चुका है अपने श्रोताओं से अनुमति लेने का। तो इजाजत दीजिए नईम अख्तर और सुभद्रा रामचंद्रन को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की।
Stay tuned, friends, for coming up now is Samachar Prabhat, a Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15. Thanks for tuning in, friends. Have a nice day.
Namaskar.